प्रभात जी, तूफान रीगल जो भारत और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकराया है, कितना खतरनाक है ये और क्या रफ्तार रही इसकी?
ये जो रीमल तूफान जिससे अभी पश्चिम बंगाल प्रभावित है, इसको गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा गया और ये 26 तारीख को मध्यरात्रि को सागर द्वीप पे पहले टकराया, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है, और उसके बाद इसका पथ बांग्लादेश की तरफ था। अगर हम रफ्तार की बात करें तो जो वायु की गति थी वो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था, जो कि बढ़ के अनुमानित था, जो कि भारतीय मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी की थी उसके हिसाब से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ा। तीन जिले जो पश्चिम बंगाल राज्य के जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, उसमें सबसे पहले दक्षिण 24 परगना जिला, उसके बाद उत्तर 24 परगना जिला और पूर्व मेदिनीपुर, इन इन तीन जिलों में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया इसका।
तो जब ये तूफान आया तो क्या हालात थे वहां पर, क्या कैसा कैसी स्थिति थी और क्या दिखाई दे रहा था आसपास?
जैसा कि मैंने बताया कि ये मध्य रात्रि को सागर द्वीप से टकराया और उसके बाद बहुत ही तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी, साथ में बहुत तेज बारिश हो रही थी, और इसका असर तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा दिखता है, क्योंकि उतनी तेज रफ्तार से जब हवाएं चलती हैं तो बहुत सारा नुकसान होने की संभावना होती है, जो कि तीन तरीके से होती हैं। एक तो है कि तटीय इलाकों में बहुत ज्यादा समुद्र का पानी बहुत ही वेग से अंदर की तरफ आता है, दूसरा है कि जो घर हैं, जो लोगों के रहने का स्थान है, उसमें काफी नुकसान होता है, काफी क्षति होती है, और साथ ही जब पूरा इलाका पानी से भर जाता है तो वहां पे और भी अन्य सेवाएं प्रभावित होती हैं।
तो तटीय इलाकों में रह रहे लोगों के बीच क्या किसी तरह के जानों माल के नुकसान की भी खबर है?
अलग अलग मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन इसकी सरकारी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, तो हमारे पास कोई सरकारी तंत्र या सरकारी विभाग से या पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई ऐसी जानकारी हमें अभी नहीं मिली है।
तो इससे निपटने के लिए तैयारियां क्या की गई थी, खासतौर पर जो संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियां हैं वहां पर, क्या आपदा प्रबंधन के लिए उन्होंने भी कुछ प्रबंध किए थे?
सर्वप्रथम तो क्या है कि जो पश्चिम बंगाल सरकार है उन्होंने व्यापक पैमाने पर तैयारी की थी इसके लिए, और उसमें मुख्य तीन चीज़ें हैं। पहला होता है कि सभी लोगों को जब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की जाती है तो उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए स्टेट कंट्रोल रूम बनाया जाता है, जहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी और सभी मुख्य जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब लोग बैठ के मॉनिटर करते हैं सिचुएशन को। साथ ही जो जिला प्रशासन है वो बहुत ही मुस्तैद रहता है, और उनका काम होता है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, जिसको हम मल्टीपर्पज़ साइक्लोन सेंटर्स कहते हैं। सिर्फ लोगों को नहीं पहुंचाना, मतलब लोगों के साथ जो उनके मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनको भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। उसके बाद होता है कि जब उनका इवैक्यूएशन हो गया, उन सबों को मल्टीपर्पज़ साइक्लोन सेंटर्स में पहुंचा दिया गया, तो वहाँ पे उचित प्रबंधन करना, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, जो वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी है, उन सबों का ध्यान रखा जाता है, और कुछ विशेष निर्देश जारी किए जाते हैं, जैसे मछुआरों को पहले ही चेतावनी दी जाती है कि वो कोई भी समुद्र में ना जाएं। साथ ही और भी जो इलाके हैं जहाँ पे कई बार बहुत तेज गति से जब हवाएं चलती हैं तो बहुत सारे पेड़ हैं जो कि टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, बहुत सारी बिजली की तारें हैं, खंभे हैं जो प्रभावित हो जाते हैं, तो उन सब का ध्यान पश्चिम बंगाल सरकार ने रखा। यूएन एजेंसियों का हमारा जो मुख्यतः हमने दो तरीके से इस पूरे आपदा प्रबंधन में कार्य किया, एक तो इंटर एजेंसी ग्रुप है जिसमें एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्फीयर इंडिया हैं, और तमाम बाकी सभी जो कि ग्राउंड जीरो पे प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी मतलब वहाँ पे मौजूदगी है, वो सब इसके पार्ट हैं। तो इंटर एजेंसी ग्रुप के साथ सहयोग करना, उसमें जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस मीटिंग हुई उसमें भाग लेना और समझना कि ये कितना गंभीर है, इसके क्या क्या नुकसान संभावित हैं, किन क्षेत्रों में संभावित हैं और किस तरीके से ये चक्रवात प्रभाव डालेगा, तो एक तो ये हमारा सहयोग रहा। दूसरा है कि हम लोगों ने कुछ तैयारियां की अपने लिए भी, कि ताकि जितने भी यूएन के स्टाफ हैं वो सभी सुरक्षित रहें, सारे जितने भी डिपेंडेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो सब सुरक्षित रहें। तो एहतियात के तौर पे जो एनडीएमए ने गाइडलाइंस जारी किए हैं, वो पहले ही 2 दिन पहले ही सबको प्रेषित कर दी गई थी कि जानकारी के स्तर पे वो रख लें और अपनी तैयारियां कर लें। तीसरा हमारा है कि सरकार के अलग अलग विभाग हैं, उनके साथ मिलके जिस तरीके से आगे रिस्पॉन्स प्लानिंग होगी और सरकार जिस तरीके से यूएन एजेंसियों का सहयोग चाहेगी, यूनिसेफ का सहयोग चाहेगी, उस पर देखेंगे कि हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं।
ये जो तटीय इलाके होते हैं तूफानों के प्रति बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदला है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपदाओं से ज्यादा नुकसान ना हो, कम से कम क्षति हो?
मतलब अगर हम पिछले 3-4 सालों में देखें, जो अलग अलग चक्रवात से प्रभावित हुए हैं, चाहे हम अम्फन की बात करें, यश की बात करें, रीमल की बात करें, तो जो पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किए हैं, जो सर्वप्रथम है कि इवैक्यूएशन की समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। दूसरा है कि जितने भी तटबंध हैं, अगर उनका उनको विशेष मरम्मत की जरूरत होती है, उनको स्ट्रॉन्ग मजबूत करने की जरूरत होती है, ताकि जब समुद्र से बहुत ही ऊंचे वेग में पानी अंदर की तरफ आए तो उनको रोका जा सके, ताकि वो पूरा इलाका बाढ़ प्रभावित ना हो जाए। तो उसमें काफी सराहनीय प्रयास किए गए हैं। और तीसरा है कि लोगों में जानकारी का स्तर बहुत बढ़ा है। लोग जो सरकारी एजेंसियों के साथ, अलग अलग जिला प्रशासन या ब्लॉक प्रशासन, प्रखंड प्रशासन के साथ मिलके काम करते हैं, तो ये 3 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसमें हम देखते हैं कि काफी सुधार हुआ है।